Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sri Krishna Balaram Mandiram ISKCON Vrindavan ke bhagyashali bhakto, Bhakti Shastri ke Bhagavad Gita ke antim charan mein 18th adhyay ka shubharambh karne ja rahe hain. Shri Prabhupada ji ne 18th adhyay ke liye likha hai. संन्यास की सिद्धि और सारांश, गीता का सारांश. और सामान्य गीताओं में इसको मोक्ष योग कहते हैं. इसके पहले 12 श्लोक, 1 से लेकर 12 तक, जो भगवत गीता की 1 से 6 अध्याय में जो कुछ सिखाया गया है 1 से 6 तक, उसका सारांश है पहले 12 श्लोकों में. और विशेष रूप से देखा जाए तो पहले 6 अध्यायों में निष्काम कर्म योग कैसे ज्ञान से होता हुआ योग से भक्ति तक पहुंचता है. तो इसका पहला श्लोक अर्जुन का प्रश्न है. अर्जुन वाचा सन्यास्यस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागश्च ऋषिकेशा पृथक्केशी निशोधना. इस श्लोक में बताओ कृष्ण के संबोधन कितने हैं. महाबाहु है, ऋषिकेश है, केशी निशोधन है, 3 है. ठीक है, 3 संबोधन है. उसका भी महत्व है, 3 संबोधन है. तीन संबोधन है और 2 शब्दों की परिभाषा तत्व से अर्जुन जानना चाहते हैं. वो कौन से शब्द हैं 2? संन्यास और त्याग. अर्जुन संन्यास और त्याग जो 2 शब्द हैं उसकी परिभाषा जानना चाहता है और उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण को 3 संबोधन के साथ प्रश्न पूछ रहा है. ठीक है, ये श्लोक का ये सीधा अर्थ है. अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं 18th अध्याय में 3 प्रकार का सन्यास है. ज्ञान सन्यास, कर्म सन्यास, ये सन्यास है भाई. कर्म को छोड़ो, कर्म का सन्यास. ज्ञान को छोड़ो, ज्ञान का सन्यास. कर्म के फल को त्यागो, ये भी एक और सन्यास है. लिखा नहीं है यहां, कहा 3 प्रकार का सन्यास. इसमें 3 प्रकार का सन्यास है लिख रहे हैं, और लिखा है ज्ञान और कर्म, और लिखा है मुक्ति की परिभाषा है इस अध्याय में, और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और गुह्यतम है. ये इस अध्याय में मिलेगा आपको. तो अध्याय में क्या मिलेगा? 3 प्रकार का सन्यास, कर्म सन्यास, ज्ञान सन्यास और मुक्ति. सन्यासी जो मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति मुक्ति चाहने वाले सन्यासी, और फिर भक्ति सर्वश्रेष्ठ और गुह्यतम है. ये है 18th अध्याय में. तो अब जो पहले हमें अध्याय पढ़े उसमें लिखा था तत् शब्द, तत् सत ओम, तत् सत उदाहरण. जो उच्चारण करेगा, चाहे वो यज्ञ करे, चाहे तप करे या दान दे, और वो चाहता क्या है? मुक्ति. वो मुक्ति चाहता है तत् उच्चारण करते हुए. किससे मुक्ति चाहता है? अतत् से, जो सत्य तत् नहीं है. तत् है भगवान और अतत् है जगत. तो जगत के बंधन से जो मुक्त होकर और मुक्ति चाहता है वो ओम तत् सत् का उच्चारण करता है. इसके लिए सीधा है कि ये है सन्यासी. ये सन्यासी है जो भौतिक बंधन से मुक्त होके, मुक्त करने के लिए ये उच्चारण करते हैं. और दूसरे हैं जो कर्म के फल का त्याग करते हैं, जिनका वर्णन है सर्वकर्म फल त्यागम तत्कुरु यतात्मवान. कहाँ है श्लोक ये? बारहवें का ग्यारहवा, बारह के ग्यारह में त्याग शब्द है। देखो क्या लिखा है बारह के ग्यारह में, सर्वकर्म फल त्यागम तत्कुरु यतात्मान, है ना। अब इसका क्या, तो सब प्रकार के कर्मों का फल त्याग करना ध्यान पूर्वक, उसको त्याग कहते हैं। ये दूसरे है ना इसका मतलब, तो इसका मतलब दो अर्थ हो गए। और फिर कहते हैं अर्जुन इन दो के बीच में अंतर जानना चाहता है। तो संन्यास और त्याग की अगर अलग अर्थ है तो हमको समझाइए, और अगर अलग नहीं है, एक है, तो भी हमको स्पष्ट करके बताइए। ऋषिकेश क्यों कहते हैं, क्या इंद्रियों के स्वामी हो, तो मेरे अंदर जो ये प्रश्न पूछने की जो जिज्ञासा है, ये भी तो आपने किया है, आप ही हमारी बुद्धि को प्रेरणा देते हैं तब हम पूछते हैं। और फिर जो मेरे को ये संदेह हो गया दो शब्दों के बीच में, तो संदेह तो शैतान के समान है, और ये तो राक्षस के समान है, और आप केशी निषूदन है, तो आप इसका समाधान कीजिए। आप महाबाहो है, शक्तिशाली है, मैं तो जीव हूँ, छोटा हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो ये इन तीनों शब्दों का अर्थ है, आप महाबाहो हैं। और फिर लिखा है कि मैं तो, मेरी तो शक्ति आपके सामने तुच्छ है। एक और बात लिखते हैं अर्जुन इसके साथ, अर्जुन के लिए चक्रवर्ती पाद, आपने मुझसे मैत्री कर लिया, मुझे अपना सखा बना लिया, मैं आपका एक विस्तार हूँ, मुझे आपने सखा बना लिया। आपके दूसरे विस्तार बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनको नहीं बनाया आपने, मेरे ऊपर ये कृपा की है विशेष के, आपने मुझे सखा बनाया। दूसरे ज्ञान के भंडार आपके और भी तो विस्तार हैं, चार कुमार हैं, और कहा जाए तो बहुत बड़े ज्ञान में, लेकिन सखा तो आपने मुझे ही बनाया है, इसलिए मुझे प्रश्न पूछने में कोई भी भय नहीं है, क्योंकि मित्र है, मित्र से पूछने में कौन सा डर लगता है, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछने के लिए जो है साहस कर रहा हूं। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, तो अब क्या संबंध क्या हो गया इस 18वें अध्याय का, यहां दो श्लोकों के साथ संबंध हो गया, ओम तत्व सत वाले से और 12वें अध्याय के श्लोक से, तो दो ये संबंध हो गया। अब दो और संबंध बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, कहते हैं 18वें अध्याय में सारी गीता का सारांश बताया गया है, और विशेष रूप से गुह्यतम जो भक्ति है उसका वर्णन किया है, और एक शब्द और लिखा है शरणागति समझाई गई है। 18वें अध्याय में शरणागति है, भक्ति गुह्यतम है, ये है, और सारे गीता का सार है। तो अर्जुन को संदेह किसके ऊपर है, दो शब्दों के ऊपर है। पहला क्या है, सन्यास। बोला ये सन्यास कहां सुना था, तो सन्यास सुना था 5:13 में, 5:13 में सन्यास के लिए शब्द क्या है, सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्या सते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही, इसके बाद ये लिखा है, याद है 9:13 में सन्यास शब्द है, सॉरी 5:13 में, हाँ, तो इसमें पहले हो जाए क्या लिखा है, सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यासते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही न कुर्वन न कारिन, ऐसे लिखा है, ठीक है। अब त्याग कहाँ है, तो ये कहते हैं त्याग है 4:20 में, त्यागात कर्म फला संगम, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्र, देखो है के 4:20 में क्या है, त्यक्ता कर्म फलम त्यागम, फिर क्या है, नित्य तृप्तो निराश्र निर्मोहो निरंकार, ऐसे क्या है, अच्छा, तो ये है त्याग की परिभाषा गीता में, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो है नहीं निराश्रय, कर्माणि अभिप्रवृत्ते नता न सबध्यते, न एव किंचित करोति स, वो कुछ भी नहीं करता है, ये त्याग की परिभाषा है। तो ये भी दो, इन दो शब्दों को अर्जुन को क्यों संदेह हुआ, ये दो जगहों पे गीता में संदेह है, ठीक है। पहले 17 और 12 से और फिर 5 और 4 से, ठीक है। तो ये दोनों शब्द इसका मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, इनका अर्थ अलग है या दोनों का एक अर्थ है, ये बताइए हमको। कि उदाहरण क्या दे रहे हैं कि ऐसे अलग है दो कि भाई पर्वत और पेड़, भाई ये पेड़ है और ये पत्थर है, ये तो दो अलग चीजें हैं ना। तो ऐसे अगर अलग है जैसे पेड़ और पत्थर अलग है, या दोनों एक जैसे हैं जैसे कौरव और पांडव, तो कौरव और पांडव दोनों कौरव ही तो हैं, तो ऐसे दोनों का अर्थ ऐसा है कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, ये बलदेव विद्याभूषण कहते हैं। हे महाबाहु कृष्ण ऋषिकेश, क्योंकि आप बुद्धि के सारे कार्य का संचालन करते हैं, मेरे मन में संदेह हो गया है और आप केशी निशुद्धन है, आप संदेह का समाधान कीजिए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता तो 17वें अध्याय में संपूर्ण हो गई, अब 18वां अध्याय गीता का सारांश है, जो अभी तक वर्णन हुआ है उस सारे को सारांश किया गया है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, हर एक भगवत गीता के अध्याय में मुख्य रूप से भक्ति के ऊपर ही बल दिया गया है, भक्ति के ऊपर ही, भक्तिमय परम पुरुष भगवान की सेवा परम लक्ष्य है, यही बात सब अध्यायों में कही गई है, और इसी बात को फिर बल देकर 18वें अध्याय में भी वर्णित की गई है, और ये क्या है, गुह्यतम ज्ञान का मार्ग है। क्या हुआ ना, ठीक है। और अब देखिए, एक प्रभुपाद जी बात लिखते हैं कि सब जगह कोई मानो कहे पूछेगा कहाँ लिखा है सब जगह भक्ति, तो प्रभुपाद जी दो उदाहरण दे रहे हैं, 6 के 47 में भगवान ने लिखा है योगी नाम सर्वेशम, तो पहले 6 का सारांश तो ये है, और फिर 7 से 12 तक तो है ही शुद्ध भक्ति का स्वभाव क्या है, भक्ति में क्या किया जाता है उसका वर्णन हो गया, और तीसरे जो 6 अध्याय जो अब हम कर रहे हैं इसमें ज्ञान त्याग और भौतिक जगत के कार्य और दिव्य प्रकृति और भक्ति इसका वर्णन है, तो 5 चीजों का वर्णन है, ज्ञान का है, त्याग का है, भौतिक कार्यों का है, दिव्य क्या लिखा है, दिव्य भक्ति से पहले ट्रांसनल नेचर एंड डिवोशनल सर्विस, और अपरा और परा, मटेरियल नेचर एंड ट्रांसनल नेचर, परा और अपरा, परा और अपरा कार्य, ज्ञान वैराग परा कार्य अपरा कार्य और भक्ति, 5 ही हो गए। तो सारे कार्य भगवान के संबंध में करने चाहिए, और इसके लिए 17वें अध्याय में ओम तत्सत कहा गया था, और ओम तत्सत का अर्थ है विष्णु, तो प्रभुपाद जी भी 17वें अध्याय से इसको जोड़ रहे हैं पहले। और तीसरा जो भगवत गीता का ये विभाग है, इसमें भक्ति का ही दर्शन कराया गया है और कुछ भी नहीं है, जीवन का अंतिम लक्ष्य तो भक्ति ही है, और इसी बात को प्रमाणित करने के लिए पूर्व आचार्यों का ब्रह्म सूत्र का और वेदांत सूत्र का उदाहरण दिया गया है। पहले दूसरे अध्याय में क्या था, सारे गीता का सार, और ये सार दोनों को, दोनों में कैसे अंतर करेंगे, प्रभुपाद ने शब्द लिखा है वो सिनॉप्सिस था, ये समरी है, तो सिनॉप्सिस था पहला, दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय में सिनॉप्सिस है और 18वें अध्याय में समरी है, दोनों में अंतर क्या है। सिनॉप्सिस का मतलब है कोई थोड़े में बात लोगों को समझाई जाए, फिर कोई प्रश्न पूछे उसके ऊपर विस्तार करके वर्णन किया जाए, और फिर जब सब समझाया जाए तो फिर सब का उपसंहार करके थोड़े में बताया जाए। तो पहले जो बताया जाता है थोड़ा, वो भूमिका है, उसमें जैसे सूत्र की तरह है वो, उसका विस्तार की जरूरत है, और फिर व्याख्या करने के बाद फिर उसको सारांश किया जाए, वो 18वां अध्याय। हाँ, तो इस तरीके से ये दोनों हैं, ठीक है। अब प्रभुपाद के कुछ निराकारवादी जो है वो तो कहते हैं वेदांत सूत्र केवल हमारा ही अधिकार है, ऐसी बात नहीं है। वेदांत सूत्र से भी भक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं मैंने ही वेदांत दिया है, मेरे से, मेरे कोई वेदांत से जानना है। सारे शास्त्र, सारे वेद भक्ति का ही वर्णन करते हैं, और यही तो भगवद गीता में वर्णित है। अब वो बात जो मैंने अभी आपको बताई, क्या लिखा है आपके, अभी हिंदी में देखिए, पढ़िए, बताइए दूसरा अध्याय क्या है, क्या लिखा है हिंदी में, क्या लिखा है दूसरे अध्याय में, क्या है और 18वें में, तो ये देखो दोनों को शब्द एक जैसे ही बोल रहे, सार और सारांश, लेकिन है दोनों में अंतर, सिनॉप्सिस और समरी में अंतर है, सिनॉप्सिस और समरी, संक्षिप्त और सारांश। अब जीवन का लक्ष्य क्या लिखा है देखो जरा, जीवन का लक्ष्य है त्याग लिखा है कि संन्यास लिखा है,
त्याग तथा त्रिगुणातीत दिव्यवती प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया
है। अब देखिए, अगर ये जीवन का लक्ष्य है, त्याग अगर जीवन का लक्ष्य है, तो वो त्याग कैसा है, दिव्य स्थिति जो तीनों गुणों से ऊपर है, तो ये कौन सती त्याग किसको कहेंगे फिर, जो तीनों गुणों से ऊपर क्या होता, किस में हो सकते हैं, भक्ति से, बिना भक्ति से कोई साधन तीनों गुणों से ऊपर जाने का है ही नहीं। ज्ञान तो स्वयं सतो गुण में, तो ऊपर कैसे जाएगा। तो इसलिए स्पष्ट ये जो दो लाइन है, इसका अर्थ है कि इसके लिए जो हमारे वैष्णव संप्रदाय है ना, इसको त्यागी बोलते हैं, वैरागी बोलते हैं, वैरागी बोलते हैं प्रायः। इसका मतलब है कि भक्ति से वैराग का मतलब, हम पहले आपको कभी बताया, विशेष राग भगवान में हो जाता है, प्रेम तो संसार अपने आप छूट जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो ये प्रभुपाद जी ने लिखा है, जीवन का उद्देश्य अगर वैराग है तो उसका अर्थ है दिव्य स्थिति, तीनों प्रकृति के गुणों से परे जाना, वो तो केवल भक्ति से संभव है, और कोई साधन है ही नहीं, ठीक है। तो अर्जुन यहां भगवद गीता के त्याग, प्रभुपाद ने यहां दो शब्द लिखे, त्याग क्या है और त्यागी कौन है, ऐसे लिखा है क्या, नहीं, संन्यास लिखा है, लेकिन संन्यास का मतलब है जो सन्यासी है, और ऋषिकेश और ऋषिधन का प्रभुपाद जी ने अर्थ लिखा है, जो हम पहले कह के आए वही अर्थ है। भगवान ने केशी राक्षस का वध किया था, तो हमारा पहला श्लोक पूरा हुआ। अब अर्जुन भगवान का उत्तर सुन लो, श्री भगवान वाच काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कव्यो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचिक्षणाः। तो विचिक्षणा का अर्थ क्या है, प्राहु विचिक्षणा का मतलब बुद्धिमान कहते हैं। अब पहला क्या है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, न्यासम का मतलब संन्यासम, स सम स का आगे शब्द स का मतलब सम्यक, न्यासम का मतलब छोड़ना, स न्यास, स का मतलब सब पूर्ण रूप से छोड़ना। क्या छोड़ना? काम्य कर्म। तो काम्य कर्म क्या है? अच्छा, कर्मों के लिए कुछ शब्द है वेदों में। एक को कहते हैं काम्य कर्म, एक को कहते हैं नित्य कर्म, एक को कहते हैं नैमित्तिक कर्म। ऐसे कर्मों की परिभाषा है। तो काम्य कर्म किसको कहते हैं? पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना, इसको काम्य कर्म करने दें। काम्य कर्म का मतलब कर्म जिसके फल का इच्छा करके कार्य किया जाए, उसको त्यागने को संन्यास कहते हैं। इसका अर्थ सन्यासी को नित्य कर्म करने, जैसे गायत्री जपनी, संध्या वंदन करना है, ऐसा नहीं, वो नहीं छोड़ सकता। नित्य कर्म नहीं छोड़ेगा, केवल काम्य कर्म छोड़ेगा, ठीक है। अब कहते हैं बुद्धिमान इसको सन्यास कहते हैं, और त्याग किसको कहते हैं? सर्व कर्म फल त्याग। इसका मतलब काम्य कर्म के फल को भी त्याग देगा और नित्य कर्म के फल को भी त्याग देगा। कोई भी कर्म है उसके फल को त्याग, सब कर्मों के फल को तब त्याग देगा। कि जितने भी कर्म है, नित्य हो, नैमित्तिक हो, आपत्काल हो, कोई भी हो, उसको त्यागी कहते हैं बुद्धिमान। तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? समस्त कर्म के फल का त्याग है। इसका मतलब कर्म करेगा लेकिन फल में आसक्ति नहीं है, वो काम्य कर्म ही छोड़ देगा लेकिन नित्य कर्म करेगा। तो दोनों में अंतर है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं दोनों में शब्दों के अर्थ अलग अंतर बता रहे हैं। न्यास जो कामनाओं से काम किया जाता है, इसके लिए श्लोक बताया है। जैसे पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, पुत्र की कामना के लिए यज्ञ करे, ये श्रोत सूत्र होते हैं, इसको कहते हैं श्रोत सूत्र, वेदों में है। तो इन कर्मों को सन्यासी को नहीं करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नित्य कर्म छोड़ेगा। संध्या वंदन आदि नित्य कर्म है शास्त्र में, वो सबको करने पड़ेंगे। काम्य कर्म को छोड़ना चाहिए, ये ठीक है। त्याग का अर्थ है सारे कर्मों के फल को त्यागना, काम्य कर्म के फल को भी त्यागना और नित्य कर्म के फल को भी त्यागना। परंतु कर्म सारे करते रहना। उन कामों को नहीं छोड़ना है, कर्मों को नहीं छोड़ना है, कर्म के फल को छोड़ना है। तो दोनों में अंतर हो गया ना, एक में काम्य कर्म छोड़े जाते हैं और दूसरे में सारे कर्मों के फल को त्यागा जाता है। और श्रुति में इसके लिए भी लिखा है कर्मणा पितृ लोक, क्योंकि अगर आप नित्य कर्म भी करोगे तो भी उसका फल तो होता ही है। नित्य फल का फल, कर्म का एक फल है पितृलोक मिलेगा। धर्मेण पापम अप नोदति, और धर्म के ऊपर नित्य कर्म करोगे तो पाप नाश होगा, तो ये भी तो फल है ना, तो फल तो मिलेगा ही। तो इसलिए नित्य और काम्य दोनों कर्म के फल को त्यागने वाले को त्यागी कहते हैं। वो कर्म करता है परंतु फल नहीं लेता, ये महानारायण उपनिषद में लिखा है। इसका अर्थ है त्यागी सारे काम्य कर्म करेगा, नित्य कर्म करेगा परंतु फल की इच्छा नहीं। परंतु सन्यासी जो है वो नित्य कर्म तो करेगा पर काम्य कर्म त्याग देगा। ये है दोनों में अंतर, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं फल की इच्छा वाले कर्मों को त्यागना जो है ये भगवत गीता का निर्देश है, ऐसे लिखा है। परंतु वो कार्य जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के लिए है उनको नहीं छोड़ने चाहिए, ये आगे वाले श्लोकों में कहा जाएगा। वैदिक साहित्य में बहुत से निर्धारित साधन हैं, यज्ञ है, और उनका कुछ विशेष उद्देश्य है। जैसे कुछ यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, स्वर्ग लोक के लिए है, इन सब को छोड़ना चाहिए। ये वही बात हो गई ना, ये सन्यास की परिभाषा चल रही है। परंतु ऐसा यज्ञ जो हृदय की शुद्धि के लिए है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, आध्यात्मिक विज्ञान में उन्नति के लिए है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये है नित्य कर्म। नित्य कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए और काम्य को छोड़ना। तो ये संन्यास की परिभाषा चल रही है। देखो ये प्रभुपाद जी के इस टुकड़े में संन्यास की परिभाषा चल रही है। पहले पढ़ के आया इसलिए आसान लग रहा है। और त्याग की परिभाषा प्रभुपाद ने दी नहीं है। देखो संन्यास का ही दिया है। अब तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। त्यागम दोष वदिति एके कर्म प्राहोर मनीष्णः यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम इति चापरे। त्याजम दोषवदी इति एके। एक तो ऐसे हैं कुछ लोग जो कहते हैं क्योंकि दोष है कर्मों में इसलिए त्यागना चाहिए। कौन से कर्म? कर्म प्राहुर मनीषिणः, जो मननशील है प्रायः वो कहते हैं कि कर्मों में दोष है इसलिए कर्मों को त्यागना चाहिए। और मतलब कर्मों को त्यागना। दूसरे जो हैं वो कहते हैं च अपरे, दूसरे कहते हैं यज्ञ दान तप ये कर्म कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो दो मत वाले लोग हो गए। एक मत इस मत के लोग हैं जो कहते हैं सब कर्मों में दोष है इसलिए छोड़ देना चाहिए। दूसरे कहते हैं कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो कर्म अच्छे हैं वो कभी नहीं छोड़ने चाहिए। विशेष रूप से तीन नाम लिखे हैं, यज्ञ तप दान कर्म न त्यजित। अब चक्रवर्ती पाद देखते हैं दूसरों का राय क्या है। वो भगवान दे रहे हैं, अपना नहीं दे रहे हैं। दूसरे जो शास्त्र में राय है उनके राय दे रहे हैं। और किस विषय में राय दे रहे हैं? त्याग के विषय में, क्योंकि त्याज्य में दोनों शब्द त्याग के विषय में। त्याग के विषय में भगवान अन्य विद्वानों का या मुनियों का राय दे रहे हैं। सांख्या वाले जो हैं ये है मनीषिणः। मनीषिणः कौन से हैं? सांख्या दर्शन के, सांख्या दर्शन वाले ज्ञानी। वो कहते हैं जो भी कर्मों का वर्णन शास्त्र में है उन सब में दोष है, क्योंकि उसमें हिंसा है। जैसे पशु हत्या है, यज्ञ करेंगे तो हिंसा है, और भी कुछ अवगुण है, इसलिए सारे ही पूर्ण रूप से त्यागने चाहिए। ये कौन कहता है? सांख्य वाले। और जो दूसरे हैं मीमांसिक, अपरे हैं मीमांसिक, ये छह दर्शन है उसकी बात है। उसमें से मीमांसिक कहते हैं कि यज्ञ है, दान है, तप है जो शास्त्रों में, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, ये छोड़े नहीं जा सकते। तो चक्रवर्ती पाद ने हमको इन दोनों का, कौन ऐसे कहते हैं उन दोनों का हमको थोड़ा जानकारी दे दी। पहले सांख्या वाले हैं और दूसरे मीमांसा वाले हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वेदों में ऐसी बहुत से विषय हैं जिनके ऊपर क्या लिखा है, जिनके ऊपर मतभेद है। जैसे पशु हत्या यज्ञ में करना, कुछ लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, तो बहुत घृणित कार्य है, परंतु वेदों में लिखा हुआ है। क्योंकि मारा नहीं जाता है उस पशु को, जो है नया जीवन मिलता है। कभी कभी उसको नया जीवन, कभी कभी वो मानव शरीर में जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं ये अलग विचार है संतों के। कुछ कहते हैं कि पशु हत्या पूर्ण रूप से त्यागनी चाहिए, और कुछ कहते हैं कुछ तो यज्ञ करने ही चाहिए। परंतु भगवान के इसके विषय में अपना राय नहीं दे रहे अभी तक, दूसरों का राय है। तो श्री प्रभुपाद जी ने इसको कुछ और प्रकार से बताया है कि पशु यज्ञ के विषय में दो प्रकार के राय हैं। चौथा श्लोक, निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भर्त सतमा त्यागो ही पुरुष व्याग्रह त्रिविध संप्रकृतितः। निश्चयम शृणु मे तत्र त्याग भर्त सतम, निश्चयम शृणु मे, अब मेरी बात सुनो, निश्चय से मैं बताता हूं, वो तो दूसरों की राय थी, मेरी राय क्या है। त्याग किसको कहते हैं? हे भरत श्रेष्ठ, भरत सतम, हे भरत श्रेष्ठ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ। अब मैं आपको त्याग के विषय में, तो आप पुरुष व्याग्रह हैं, कैसे हैं आप पुरुष व्याग्रह, मानव में व्याघ्र है, शेर है, बाघ है, ठीक है। त्रिविध संप्रकृतता मतलब तीन प्रकार का त्याग होता है, इसका मतलब तो ये हो गया ना, त्याग तीन प्रकार का होता है। प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण त्याग को तीन में विभाजित कर रहे हैं, भगवान अपना राय दे रहे हैं। त्याग तीन प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये सातवें श्लोक तक इन तीनों त्यागों का वर्णन चलेगा, पांच छह सात में, और उसके उपरांत भगवान त्याग का और फिर भगवान तमोगुण के त्याग का विशेष वर्णन करेंगे। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि आगे जो श्लोकों में संन्यास शब्द भी आएगा, तो भगवान का विचार संन्यास और त्याग में, भगवान के विचार में कोई अंतर नहीं है, ऐसा चक्रवर्ती पाद लिखते हैं। देखेंगे आगे क्या आता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, नाना मत हैं किसके विषय में, त्याग के विषय में, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं इस निर्णय को क्या समझना चाहिए, अंतिम निर्णय समझना चाहिए, इसके बाद और किसी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। पर वेद क्या है, भगवान के दिए हुए नियम है, जब भगवान साक्षात खड़े हैं तो उनके शब्दों को अंतिम शब्द मानना चाहिए। तो तीन प्रकार का त्याग होता है प्रकृति के गुणों के अनुसार। पांचवां श्लोक, यज्ञता यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यम एवता यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीष्णिना। अब भगवान कहते हैं यज्ञ तप और दान, ये जो कर्म हैं ये कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, एवतत, कभी इनको त्यागना नहीं चाहिए। और फिर दोबारा कहते हैं ये तीनों कर्म बड़े बड़े मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं, जो पवित्र हैं उनको भी पवित्र करने वाले हैं, तो ये कभी नहीं छोड़ने चाहिए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान के अनुसार कुछ काम्य कर्म जो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जरूरी नहीं है, जैसे कुछ यज्ञ है, दान है, तप है, और जो सात्विक हैं, जो सात्विक हैं अपने स्वभाव में है, उनको तो करना ही चाहिए, परंतु फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सात्विक प्रकृति के यज्ञ करने चाहिए बिना फल की इच्छा के, ये एक पहली बात कहते हैं। और दूसरा श्लोक, दूसरे श्लोक में सन्यास में काम्य कर्म छोड़ने को कहा गया था, और यहां कहा गया है कुछ काम्य कर्म किए जा सकते हैं परंतु फल की इच्छा छोड़कर, ये दोनों में अंतर है, ये श्लोक में कहा गया है। यज्ञ तप दान निरंतर सदा करना चाहिए, क्योंकि वो चेतना को पवित्र करते हैं। प्रभुपाद जी का इसके तात्पर्य में एक बात बहुत विवाह वाली प्रसिद्ध रूप से प्रसिद्ध है। प्रभुपाद लिखते हैं, योगियों को सब वो कार्य जो मानव समाज में उन्नति के है वो करने चाहिए। मानव समाज में उन्नति के सारे कार्य योगियों को करने चाहिए, ऐसे लिखा है ना, देखो किताब में पढ़ते चलो साथ में। बहुत ही कैसे कार्य है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए मानव के लिए कौन से कार्य है, क्या लिखा है, संस्कार है। ये जैसे 16 संस्कार है, ये तो कभी नहीं छोड़ने चाहिए। अब प्रभुपाद कहते इन 16 संस्कारों में एक विवाह संस्कार है। ये विवाह संस्कार जो है ये सन्यासी के लिए तो जरूरी नहीं है, जो सन्यासी है उसको नहीं करना चाहिए। अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, तो फिर वो किसी के विवाह के लिए किसी को क्यों कहेगा कि करो। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे यज्ञ नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि मानव समाज के हित के लिए कभी नहीं छोड़ने चाहिए। ये विवाह संस्कार जो है मानव समाज को नेम में चलाने के लिए, उसके मन को नियंत्रण करने के लिए है, ताकि वो शांत रहे और आध्यात्मिक उन्नति करे। बल अधिकांश लोगों को विवाह के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, किसको, सन्यासी को भी, और सन्यासी को तो कभी स्त्री से बात संभाषण नहीं करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो नीचे स्तर जीवन जिनका है, नौजवान जो है उनके लिए विवाह के लिए सलाह न दे। और प्रभुपाद कहते हैं ये सारे यज्ञ जो है भगवान की प्राप्ति के लिए है, इसलिए जब नीचे स्तर पे हैं तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसमें प्रभुपाद जी का ये लिखने के पीछे भाव ये है कि प्रभुपाद जी सन्यासी होते हुए विवाह का यज्ञ किया, पहला और कौन करेगा, जो पहले प्रभुपाद ने वो सत्स्वरूप दास को का विवाह किया, क्या नाम उसके साथ, जदुरानी के साथ, जानकी और मुकुंदा का विवाह किया, तो ये प्रभुपाद ने विवाह किया, तो सन्यासी को विवाह नहीं करने का काम है। पर तो प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं क्योंकि उन नौजवान वैसे ही साथ घूम रहे थे, वो तो पाप कर्म था, कम से कम उनको नियमित तो किया, तो सन्यासी का ये काम नहीं है। परंतु भगवान कहते हैं ये नहीं छोड़ने चाहिए समाज में, इसलिए मैं करता हूं, इसलिए लोग निंदा भी करें तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं ये कर रहा हूं भगवान के आदेश के अनुसार। अब प्रभुपाद कहते हैं ऐसे इसी प्रकार से दान है, वो भी हृदय को पवित्र करता है। सही व्यक्ति को दान दिया जाए, जैसे पहले कहा गया है 17वें अध्याय में, तो आध्यात्मिक उन्नति होती है। 6 श्लोक, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति इति मे पारथा निश्चितम मतम उत्तमम। एतानी अपितु कर्माणि, ये सारे कर्म निश्चितम कर्तव्याम इति, इन सबको करना चाहिए, इन सारे कर्मों को करना चाहिए। कैसे, संगम त्यक्त्वा। संगम त्यक्त्वा का मतलब है मैं करता हूं ये विचार त्यागना चाहिए। किस चीज को त्यागना चाहिए? कर्तापन के त्याग, विचार को त्याग के करना चाहिए। और दूसरा क्या? एक कर्तापन को त्यागना चाहिए, और क्या त्यागना चाहिए? त्यक्त्वा फलानि च, और फल को भी त्यागना चाहिए। मे उत्तमम मतम, ये मेरा उत्तम मत है। तो अब त्याग के अंदर दो बातें आ गई, कर्तापन का त्याग और फल का त्याग। कर्तापन का त्याग और फल का त्याग, ये भगवान का उत्तम मत है। काम कोई नहीं छोड़ना है, परंतु कर्तापन को और फल को छोड़ना है। नहीं, मंदिर बनाना ये भी तो कार्य है, इतना बड़ा कार्य चल रहा है। रसोई का किचन में काम करना ये भी तो कार्य है, ये भी तो कार्य है। अब इसमें मैं करता हूं ये निकाल देना चाहिए। प्रभुपाद ने जितने मंदिर बनाए कोई अपने नाम से नहीं बनाए, भगवान के नाम से बनाए। ये कर्तापन को छोड़ना हो गया। नहीं तो आप जितने मंदिर देखो लोगों के नाम से, अपने अपने नाम से। तो कर्तापन को छोड़ दिया और भोक्तापन को छोड़ना, फल को छोड़ने का मतलब ये कि कोई मेरे सुख के लिए नहीं है, मैं साथ तो नहीं ले जाऊंगा। प्रभुपाद को लेके आए बॉम्बे के अंदर, पांचवें फ्लोर पे पूरा फ्लोर प्रभुपाद जी का घर बना हुआ था। तुम्हाल कृष्ण महाराज ने कहा ऐसा ऐसा तो प्राइम मिनिस्टर का भी घर नहीं होगा, सारा टीक वुड का बना हुआ है। प्रभुपाद ने कहा मैं साथ ले जाऊंगा, आप लोग यहाँ बैठे रहोगे, मैं तो चला जाऊंगा, तो मेरे लिए थोड़ी है। तो उसमें आसक्ति नहीं थी। यहाँ ऊपर प्रभुपाद जी गए तब ब्रजनंदन महाराज मलेशिया वाले टेम्पल कमांडर थे, उसको बोला मैं तो पेड़ के नीचे रहने में अच्छा लगता है, मुझे साधु का जीवन पेड़ के नीचे होना चाहिए। हमारे गोस्वामी रहते थे, पर क्या करूं मैं, एक बड़ी संस्था का मैं मार्गदर्शक हूं, अगर मैं पेड़ के नीचे रहूंगा तो लोग आएंगे नहीं और प्रचार नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने मायापुर में जब अपना वो अभी भी पड़ा है कुटिया घास का बनाया था ना, तो वहीं रहना चाहते थे। बोला ये सात्विक है। जब लॉन्ग बिल्डिंग बन गई पहली बड़ी, उसमें प्रभुपाद का ऊपर रूम बना, तो सारे सन्यासी आके कहा प्रभुपाद जी अब आपका रूम बना है, आप चलिए उधर। बोला ये सात्विक है, मैं इधर ही रहूँगा, मैं क्या करूँगा उधर ऊपर रूम में। और फर्स्ट फ्लोर पर प्रभुपाद जी का रूम है ऊपर। तो सब ने सलाह की कि प्रभुपाद तो यही रहना चाहते हैं, अब क्या करें। तो उन्होंने बुद्धि लगाई, प्रभुपाद प्रचार के लिए लोग वहाँ ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उसमें सुविधाएँ ज़्यादा हैं तो लोग प्रचार के लिए आएंगे, इसलिए आप वहां रहेंगे तो प्रचार अच्छा होगा। बोले प्रचार के लिए चलना है तो मैं चल सकता हूं, नहीं तो ये घर मेरे लिए अच्छा है। प्रभुपाद जी भुवनेश्वर में गए तो गौर गोविंद स्वामी महाराज ने उनके लिए किसी अच्छे गेस्ट हाउस में व्यवस्था की। प्रभुपाद ने कहा ये तो राज सिक्के, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मेरा शिष्य रहता है। बोला महाराज वो तो झोपड़ी में रहता है वहां घास की। बोला मैं उसके साथ रहूंगा। और प्रभुपाद कोई दो हफ्ते से ज्यादा उस उधर ही उसी कुटिया में साथ में रहे। ये जो है त्याग है, और बहुत सिंपल जीवन। यही वृंदावन में प्रभुपाद जी एक हाथ में छाता और एक हाथ में भिक्षा का पात्र लेके जाते थे, मधुकरी करते थे। ये गोस्वामियों की ब्राह्मणों के घर से मधुकरी लाते थे। एक हाथ में पात्र होता था, एक हाथ में छाता होता था। पहले बंसी गोपाल मंदिर में रहते थे, 2 साल रहे बंसी गोपाल मंदिर में। गए कभी आप? गए देखा है बंसी गोपाल मंदिर? प्रभुपाद जी ऊपर रहे हैं। हाँ,
ऊपर रूम है नहीं, रूम को खत्म कर दिया।
हाँ, तो पहले उधर रहते थे, फिर जब ये निर्मल चंद गोस्वामी के पिताजी ने कहा कि यहाँ आके रहो, तो प्रभुपाद ने कहा यहाँ लोग ज्यादा आते हैं प्रचार के लिए, अच्छा है। फिर रूप गोस्वामी का यहाँ, जीव गोस्वामी का स्थान है, तो प्रभुपाद जी यहाँ आके रहे। तो तब तो आए कुछ थी नहीं, तो प्राय बस वो एक बार ही निकलते थे छाता हाथ में लेके, और जो है वो भिक्षा का पात्र लेके जो मिल जाता था, फिर आके एक बार पा लेते थे बस। शुरू शुरू में ऐसे भी प्रभुपाद जी इस त्याग का जीवन भी बिताए। तो ये फल की इच्छा नहीं है। इतने बड़े बनाने के बाद भी किसी के ऊपर अपना नाम नहीं, विचार नहीं। संस्था के लिए तो सब नियम बनाए, लेकिन अपने को उससे ऊपर रखा। एतानी तु कर्माणी संगम त्यक्त्वा फलानी चत कर्ता विनीति इति पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। तो दो शब्द हैं, संगम त्यक्त्वा और फलानी च, कर्तव्य को छोड़ना, कर्तापन को छोड़ना और फल को त्यागना। बलदेव विद्याभूषण इस श्लोक के ऊपर लिखते हैं, ये श्लोक कहता है यज्ञ आदि कैसे करना चाहिए जिससे हम पवित्र होंगे। तो पवित्र होने के लिए कार्य कैसे करना चाहिए, कार्य तो करना चाहिए परंतु कैसे करना चाहिए जिससे हृदय पवित्र होगा, अंतःकरण पवित्र होगा, चेतना पवित्र होगी। दो चीजों को छोड़ने से, क्या, कर्तापन और फल को त्यागने से। तो पहले संगम का मतलब मैं करता हूं ये छोड़ दिया, कि मैंने किया है ये छोड़ दिया, और दूसरा फलानी च। तो संगम को कहते हैं कर्तापन और फलानी को कहते हैं फल। जैसे फल क्या है कि इससे स्वर्ग लोक जाऊंगा, पितृ लोक जाऊंगा, ये सब छोड़ दिया। तो ये सब काय के लिए कर रहे हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान ने लिखा है शास्त्र में इसलिए कर रहा हूं। ये है उत्तम मत भगवान का, और ये है निश्चय, ये निश्चित है, निश्चय है, उत्तम मत है। ये त्याग के विषय में भगवान ये भगवान का निर्णय है त्याग के विषय में। किस विषय में ये निर्णय है, त्याग के विषय में भगवान का ये निर्णय है। बोला इसमें क्या विशेषता है, बोला इसमें विशेषता ये है कि कर्तापन का भी त्याग है। पहले श्लोक में कर्तापन का त्याग नहीं था, दूसरे में, वहां तो सिर्फ त्याग था फल का, लेकिन यहां कर्तापन का जो त्याग है ये जोड़ के भगवान अपना मत दे रहे। तो अब त्याग की परिभाषा आप बताइए क्या होगी, कर्तापन के, कर्म तो करे, कर्तापन का त्याग करे और फल का त्याग करे, उसको त्याग माना जाता है। और ये त्याग बड़े बड़े विद्वानों को भी पवित्र करने वाला है। अब प्रभुपाद जी के लिखते हैं, सारे ही यज्ञ पवित्र करने वाले हैं परंतु उनके फल को त्यागना चाहिए। भौतिक प्रकृति के जो भी यज्ञ हैं उनको त्यागना चाहिए, जो पवित्र करने वाले यज्ञ हैं उसको करना चाहिए। प्रभुपाद ने इसका दो विभाजन किया है, भौतिक प्रगति वाले कर्मों को करने की, यज्ञों को करने की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति वाले यज्ञ करने चाहिए। जो कृष्ण भावना की ओर अग्रसर करे वो सब उसको करने के लिए उत्साहित करना, प्रोत्साहन देना चाहिए। भागवत में लिखा है और धर्म का ये सबसे उच्च स्तर है। कहां लिखा है भागवत में, इसको कहां से ढूंढेंगे, क्या लिखा है भागवत में, लिखा है कोई भी कार्य जो भक्ति की ओर अग्रसर करे भगवान की उसको स्वीकार करना चाहिए, यही धर्म का उच्चतर क्या है, धर्म का उच्चतर क्या है, क्राइटेरियन। कहां लिखा है भागवत में, कहां मिलेगा, हम तो कोई कई विचार है किसी को, कहां है भागवत में ये। सैवई पुंशाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे आई तो की अप्रतीता। क्योंकि प्रभुपाद लिखे धर्म का क्या, क्या लिखा धर्म का क्या लास्ट लाइन क्या है, पढ़ो जरा, धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। ये शब्द को अगर पकड़े तो फिर तो सब वही पुनशान लगता है इस धर्म को पकड़ के, क्योंकि वो परो धर्म है। तभी, क्योंकि वो सारे कार्य भक्ति में लगाए जा सकते हैं, क्यों इस एक शब्द के आधार पे वो यही श्लोक समझ में आता है। क्या इस ये लास्ट लाइन को देख के ऐसे लगता है कि सर्व सारे धर्म की सर्वोच्च कसौटी है, तो सारे धर्म की कसौटी तो वही है परो धर्म, तो वही लगता है इस दृष्टि से। भगवान के भक्त सब प्रकार के कार्यों को स्वीकार करते हैं, सब यज्ञ दान आदि सबको स्वीकार करते हैं, और वो जो भक्ति के सहायक हैं उनको करते ही रहते हैं। सातवां श्लोक पढ़ रहे हैं। नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहादत्तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः न उपपद्यते। इसके लिए कोई भी सलाह नहीं दी गई है। किसके लिए? सन्यासः तु, सन्यासी के लिए भी ये उचित नहीं है। क्या? नियतस्य कर्मणः, नियत कर्म का मतलब क्या? नियत कर्म किसको कहते हैं? देखो लिखा है, लिखा शब्द अर्थ में प्रभुपाद ने क्या लिखा है? नियत कर्म निर्दिष्ट कार्य। इसके लिए हमने पहले शब्द क्या पढ़ा था? जो नित्य कर्म है, संध्या वंदन आदि, तो वो जो है सन्यासी को नहीं छोड़ने चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ। मोहात तस्य परित्याग, मोह के कारण अगर इसको छोड़ता है तो फिर वो तामसिक कहा जाएगा, तो उसका त्याग तामसिक होगा। क्या हिंदी में पढ़िए प्रभुपाद ने क्या लिखा है?
निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसिक कहा
जाता है। तो ये त्याग तामसिक कौन सा है? मोहवश त्याग दे। चक्रवर्ती बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, अब भगवान तीन प्रकार के त्याग का वर्णन करने जा रहे हैं और ये तीन श्लोकों में होगा। काम्य कर्म को छोड़ना चाहिए क्योंकि वो बंधन में डालेंगे। काम्य कर्म का मतलब क्या था? पुत्र प्राप्ति स्वर्ग प्राप्ति का कर्म काम्य कर्म, उसको छोड़ना चाहिए क्योंकि वो बंधन का कारण है। परंतु कभी भी नित्य और नैमित्त कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अब कौन से हैं? तो कहते हैं रोज के पांच यज्ञ हैं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं रोज के पांच यज्ञ हैं। कौन से रोज के पांच यज्ञ हैं? पंच सोना के लिए पांच यज्ञ हैं। पंच सोना का मतलब पांच हत्याएं होती हैं, तो उसके निवारण के लिए पांच यज्ञ हैं, ये गृहस्थी को करने हैं विशेष रूप से। कौन से हैं? किसी को याद है पांच यज्ञ? देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, ऋषि यज्ञ, कितने हो गए? देव, भूत, पितृ, ऋषि हो गया, अब एक और रह गया अतिथि, अतिथि यज्ञ, अतिथि मेहमान। भूत का मतलब कुत्ते को रोटी देना, गाय को रोटी देना, चूंटी को पानी पिलाना, चूंटी के लिए दाना डालना, पक्षी को पानी पिलाना। चूंटी को पानी पिलाना बहुत मुश्किल है काम। चूंटी को दाना देना और पक्षी को पानी पिलाना। अबे चूंटी के गले में घंटी बांधना क्या कौन भाई रशिया में देखा बेचारे बाहर बर्फ है तो बाहर पानी कहाँ से पिए पक्षी बर्फ में पानी कैसे पिए बड़ी परेशानी थोड़ा दाना रखे पानी अंदर से रखे पक्षी बर्फ में पानी कैसे बेचारा पिए। और एक जगह मैं चौराहे में देखा आप हाथ में दाने रखें तो सारे कबूतर हाथ के ऊपर बैठ के खाते हैं। इसका मतलब पुराने संस्कार अभी वहां हैं। कबूतर डरते नहीं यहां नहीं आएंगे कबूतर आप देखें लेकिन वहां चौराहे के बीच में आप दाने ऐसे रखो कबूतर हाथ के ऊपर के बैठ के खाता है। तो पुराने संस्कार यहीं से वहां हमने आंखों से देखा हाथ में खिलाया कहीं एक होगा फोटो मेरा। एक प्रयागराज में नाव में जब जाते हैं इन सर्दियों में कुछ पक्षी आते हैं आप नाव में चढ़ेंगे तो आपको कहेंगे कुछ हमसे कुछ दाना लो ऐसे दो पक्षी हाथ में आगे खाते हैं। अभी भी कुछ पक्षी वो पक्षी सारे रशिया के वो सर्दियाँ वहाँ होती हैं ना यहाँ भाग के आते हैं। सर्दियों में पक्षी देखा है आपने प्रयाग में देखा है पक्षियों को खिलाने वाला नाव में चढ़ते हुए पक्षी आते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण क्या कह रहे हैं पंच यज्ञ चलो यहाँ क्या लिखा है पंच यज्ञ के लिए ये पंच यज्ञ कौन से हैं वेदों का पाठ करना ऋषि यज्ञ हो गया देवार्चन करना भगवान की पूजन करना पितरों का पूजन तर्पण करना अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ ये नित्य हमारे कर्म है रोज करने हैं। और नैमित्तिक कौन से हैं जैसे एकादशी है ऐसे खास पूर्णिमा है ये नैमित्तिक है जो नैम साल में आते रहे इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये पवित्रता और मुक्ति के साधन है क्योंकि इनके अंदर ही ज्ञान समाया हुआ है यह आत्म साक्षात्कार के मार्ग के लिए आवश्यक है। अब बलदेव विद्याभूषण तीसरे अध्याय में जैसे लिखा है कर्म का चक्कर कर्म करेंगे तो यज्ञ करेंगे तो बरसात आएगी अन्न अब ये कर्म करना छोड़ देंगे तो क्या होगा मोह के कारण ये कर्म छोड़ देंगे तो तामसिक त्याग कहलाएगा। वो तीसरे अध्याय वाले कर्मों की बात कर श्री प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक संतुष्टि के कार्यों को त्यागा जा सकता है परंतु आध्यात्मिक उन्नति के कार्यों को करना चाहिए जैसे कि भगवान के लिए भोग बनाना है भगवान को प्रसाद अर्पण करना है और फिर प्रसाद को पाना है ये कभी कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग हैं ये कार्य भी नहीं करते कौन करेगा भगवान के लिए भोग लगाने क्या जरूरत है और थोड़ा सा मिश्री रख दो भगवान के सामने इतना तो तू भी मिश्री खा के रह जा नहीं मैं तो चार रोटी खाऊंगा भगवान मिश्री खाए ये काय के लिए नहीं करते आलसी आलस के कारण ये आलस के कारण छोड़ते हैं मोह के कारण छोड़ते हैं बहुत से कर्म। अब प्रभुपाद कहते हैं जो सन्यासी है उसको अपने लिए नहीं पकाना चाहिए क्योंकि सन्यासी को आग जलाने की नहीं अनुमति नहीं है आग नहीं जलानी चाहिए। प्रभुपाद ने सन्यासी को आग जला के अपने लिए नहीं पकाना चाहिए परंतु भगवान के लिए तो बना सकता है उसका मन तो नहीं। ऐसे ही सन्यासी को विवाह नहीं कराना चाहिए परंतु अपने भक्तों का कृष्ण भावना में कराता है। अगर इन कर्मों को अगर त्याग देगा तो फिर इसको कहा जाएगा ये तमोगुण में है। प्रभुपाद ने दो उदाहरण दिए हैं यहां भोग बनाने के कर्म को छोड़ना और जहां लड़के लड़कियां दोनों शिष्य बने, विवाह करना है तो विवाह न कराना, कहने नहीं कराऊंगा मैं, कहीं भी चले जाऊं, तो ये तामसिक है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। दुःखमित्येव यत्कर्मा काय क्लेश भयात् त्यजेत सत्कृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्याग फलम लभेत। ये काम करने से बड़ा दुख लगता है, बहुत काया को क्लेश मिलता है, शरीर को बहुत पीड़ा आती है, इस भय के कारण कार्य छोड़ दे तो उसको राजसिक त्याग कहा जाएगा। नैव त्याग फलम लभेत, उसको त्याग का फल नहीं मिलेगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो इसके लिए बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ये जानते हुए कि अपने निर्धारित कर्म जो है बिना इच्छा के मुक्ति के लिए किए जाएं, ये तो जानता है। अगर मुक्ति का इच्छुक इन कार्यों को भय के कारण छोड़ दे कि शरीर में तकलीफ होगी, काया कलेश भयात, जैसे अब कौन यहां से लोही बाजार तक जाए, सामान लाए, फिर पकाए, तो बड़े मेहनत का काम है, तो फिर राजसिक है। तो वो त्याग का फल जो ज्ञान है उसको प्राप्त नहीं होगा। आप कोई उदाहरण दीजिए, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद कहते जो कृष्ण भावना में कार्य करता है उसको पैसा कमाना नहीं छोड़ना चाहिए इस भय के कारण कि मैं कोई सकाम कर्म करना कर रहा हूं। अगर काम करने से पैसा आता है जिसको कृष्ण भावना के कार्यों में लगाया जा सकता है और सुबह सवेरे उठ जाता है और कृष्ण भावना में आगे बढ़ता है, तो भय के कारण ऐसे कर्मों को दुखदायी करके नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा अगर त्याग करेगा तो राजसिक कहलाएगा और इसका दुखदायी फल रहेगा, इसको त्याग का फल नहीं मिलेगा। अब इसका उदाहरण दो, इतना ही करते हैं, कल यहां से आगे बढ़ेंगे। ये राजसिक आप बताइए, कोई ऐसा कर्म है जिसको आप राजसिक कारण से करते हैं? काया कलेश भयात, काया के शरीर के दुख के भय के कारण नियमित भगवान की सेवा के भक्ति की उन्नति के कार्यों को छोड़ना राजसिक त्याग है। देखना चाहिए हम कब बहुत समय ऐसे कार्य करते हैं जिसमें आलस के कारण, अगर आलस के कारण करेंगे तो तामसिक हो जाएगा और कष्ट के कारण करेंगे तो राजसिक हो जाएगा। क्या ये पहले के वैदिक साहित्य के राजा महाराजा पहले हाथी के ऊपर चढ़ के अपने ध्वजा के साथ आगे खड़ा होता था युद्ध में, तो पीछे सैनिक खड़े होते थे। अब तो राजा तो घर में सोया होता है, बेचारे सैनिक मरने जाते हैं। तो ये सब ऐसा हाल हो गया है, जब तक स्वयं नहीं आगे बढ़ के शिक्षा के लिए दूसरों को सिखाएगा नहीं। प्रभुपाद स्वयं पुस्तक वितरण करने के लिए यहाँ से पेटियां लेके गए और रोज अमेरिका में उतर के दुकानों पे किताब वितरण करने जाते थे, स्वयं अपना पुस्तक छाप के और साइकिल के ऊपर चढ़ के बैक टू गार्डेड वितरण करने जाते थे। तो जो स्वयं करता है वो दूसरों को कहने के लिए अधिकार रखता है। और प्रभुपाद जी ने सब खुद पकाना अपना, तो 3 डब्बे वाले टिफिन के अंदर वो नीचे सब्जी डाल दिए, दाल डाल दी बीच में सब्जी, ऊपर चावल, एक बार में तीनों पक गया। अभी तक अपने पकाने का कार्य करते थे, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, भगवान को भोग लगा। तो वो ये सीखना चाहिए कि 70 साल की उम्र में भी प्रभुपाद ये सब कुछ करने में पीछे नहीं हटे, तो हमारे लिए प्रेरणा होना चाहिए कि हम अपने कार्यों को बड़े उत्साह के साथ, जब शरीर काम करता है तब तो करते रहें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं है, ठीक है।